Om Shanti and good evening. तो आज का विषय है खुशी जैसी खुराक नहीं. मैंने सोचा थोड़ा खुशी के बारे में हम चर्चा करेंगे और खुशी की गहराई में जाएंगे और खुशी क्यों गायब हो जाती है इस पे भी थोड़ा हम मंथन करेंगे. तो पहली बात तो ये है कि दुनिया में हर इंसान जो कुछ करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है या तो अपनी खुशी की खोज के लिए वो करता है. जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा, पीएचडी, जो भी कुछ. फिर अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई की तो अच्छी नौकरी भी चाहिए. फिर अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब कुछ. किस लिए? क्यों हम इन सब बातों के पीछे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, करते हैं तो क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी. कोई छुट्टियों पे जाते हैं तो भी हम कहते हैं अच्छी रही, मतलब खुश मिजाज हुए, अच्छा लगा, खुश होकर आए. तो हर एक जो कर्म का जो एम होता है ना, वो हमेशा यही होता है कि हम खुश रहे, खुशी पाए, आनंद के जीवन जिए. लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कभी संगम युग पे या सतयुग में, किस युग में सबसे जास्ती खुशी है या होनी चाहिए? और जवाब तो यह होना चाहिए कि संगम युग पे चाहिए. लेकिन ऐसे है या नहीं है? शायद हम समझते हैं कि सतयुग में जब जाएंगे तभी ज्यादा खुशी होंगी, तब ज्यादा खुश रहेंगे. लेकिन अभी संगम का ये युग है जिसमें अधिक से अधिक खुशी होनी चाहिए. और ये क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है और हमको पूरा ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है. इसलिए जब हम सब कुछ जानते हैं ना, तो हम खुश होने चाहिए. लेकिन वो खुशी क्यों गायब हो जाती है? तो खुशी गायब इस आपका भी ये अनुभव होगा. एक तो ये होता है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं, पड़ोसी के साथ भी तुलना करते हैं. उसने अपना घर का एक्सटेंशन किया, नई गाड़ी ली, तो हम भी कम है क्या? हमको भी करना है, हमको भी चाहिए. या जॉब में भी कोई आगे गया, प्रमोशन मिला, तो भी हम तुलना करते हैं, जाते हैं. फिर आती है बात अपेक्षाएं. संबंधों में कितनी अपेक्षाएं रखते हैं हम, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए. और इंग्लिश में तो हम कहते हैं एटलीस्ट, कम से कम इसको तो इतना तो करना चाहिए ना. और नहीं कर पाता है तो हम कितना नाराज हो जाते हैं, इतना नाराज हो जाते हैं कि इतना दुखी हो जाते हैं हम. फिर होती है पास्ट की बातें, जैसे हम कहते हैं ना भूतकाल. ये बात शायद हुआ 5 साल पहले, लेकिन वो जैसे ही हम याद करते हैं ना, तो इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतने दुखी हो जाते हैं हम. वैसे भी ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताते हैं कि जैसे हम वो एक बात याद करते हैं ना, तो जैसे कि वो बात अभी हो रही है, ऐसे बॉडी का रिएक्शन होता है कि जैसे कि वही बात अभी फिर से रिपीट हो रही है. तो ये है स्ट्रेस का रिएक्शन. तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि जैसे हम वो बात याद करते हैं ना, तो तुरंत जैसे कि वो सब जो दुखदायी जो सीन था, जो दर्द था दिल में, वो जैसे कि फिर से उत्पन्न हो जाए. तो मैं देखा जाए तो हर चीज से हमारी खुशी गायब हो सकती है, हम अटेंशन न रखे तो. तो इसलिए मैं आऊंगी लास्ट में क्या क्या मतलब फायदा है खुशी में रहने का। लेकिन अभी फिलहाल ये भी कहूंगी कि बाबा कहते हैं ना कि जैसे हम बुरा कर्म करते हैं ना, तो बुरे कर्म की सजा क्या होती है? तुरंत हमारी खुशी चली जाती है। तो मैं ये बात क्यों उठा रही हूं, क्योंकि जैसे बुरा कर्म करते हैं ना, तो उसकी सजा है दुख। सजा है दुख, इसका मतलब कि भाग्य है सुख। अच्छे कर्म करते हैं तो इसका फल क्या है? सुख। और बुरा कर्म करते हैं उसका नतीजा क्या है? दुख। तो अच्छे कर्म करने से भी हम खुशी को कांस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन लेकिन आती है बात, लेकिन माया नहीं चाहती है कि हम हमेशा खुश रहे। माया तो चाहती है कि हम दुखी रहे। क्यों? ताकि माया की जो बिजनेस है ना, वो फलीभूत होती रहे। आप देखो, आप समझो, हर चीज जो दुनिया में जो बन रही है, वो बिजनेस, कॉरपोरेशन, जो भी है, वो चाहते हैं ना कि आप उसकी लालच में रहो, आप वो इच्छो, इसलिए वो लोग बनाते हैं। आपकी इच्छा ये कम हो जाए तो उनकी बिजनेस भी कम हो जाए। तो माया भी ऐसी है, माया भी नहीं चाहती है कि हम सुखी रहे, और वो भी निरंतर। माया चाहती है कि हम दुखी रहे, ताकि माया का जो पंप है, माया का जो किंगडम है, वो बढ़ता जाए। और खुशी कौन देता है? बाबा आके हमको खुशी देते हैं। और क्यों, कैसे, इस पे आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारी जो खुशी थी, ओके, फर्स्ट तो हम मानते हैं कि सत्ययुग त्रेता में हम खुश थे, राइट? तो खुशी कब गायब हो गई? साइकिल को थोड़ा देखो, जब टाइम है थोड़ा मेडिटेशन करो साइकिल पे, और फिर आप चेक करो या तो रियलाइज करो कि हमारी खुशी कब गायब हो गई। और हमारी खुशी तब गायब हो गई जब हम अपने स्वमान की सीट से उतर गए। और ये है मुख्य पॉइंट, जैसे हम हमारे स्वमान की सीट से हम उतर गए, इसका मतलब कि माया ने हमको पकड़ लिया। और माया का वर्षा क्या है? माया का वर्षा तो दुख है। ओके, फिर वही हिसाब हम लेते हैं, तो अभी हम वापस संगम पे आते हैं, तो बाबा क्या करता है? बाबा हमारा स्वमान हमको वापस देते हैं। कितना ऊंच उठाते हैं आप, हर एक अव्यक्त मुरली देखो, या तो साकार मुरली, इसमें भी कई कई पॉइंट्स है जिसमें बाबा बच्चों की कितनी महिमा करते हैं। तो इसमें सिद्ध होता है कि बाबा तो चाहते हैं कि हर एक बाबा के बच्चे वारिस बच्चा बने, लेकिन कौन कौन ये काम कर पाएंगे, और वो भी निरंतर। इसलिए रोज बाबा कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, ध्यान खिंचवाते रहते हैं कि बच्चे अपने स्वमान में स्थायी रहे। तो यही बात है, सत्ययुग त्रेता में हम फुल टाइम सोल कॉन्शियस थे, आत्म अभिमानी स्थिति में थे, स्व अभिमानी स्थिति में थे, लेकिन धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि सत्ययुग त्रेता में हम वर्तमान के समय में रहते हैं. इन इंग्लिश वी से इन द नाउ मोमेंट, वही समय पे, वही समय जीते हैं हम. वर्तमान समय ही जीते हैं हम, न कि भविष्य का सोचते हैं, न पास्ट का सोचते हैं. इसलिए हम खुश हैं. तो अभी भी हम कोशिश करें ये प्रैक्टिस करने का कि अभी 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 फील करो. अभी ये प्रेजेंट मोमेंट है, आप फील करो इस मोमेंट, इस घड़ी, इस क्षण बिल्कुल पवित्र घड़ी है, क्योंकि इसमें न पास्ट का अंश है, न भविष्य का कुछ मिलाप है. तो ये घड़ी जो है वो बिल्कुल पवित्र घड़ी है. तो ऐसे ही हम हर एक घड़ी जीते जाए तो कितने खुश रहते हम, बहुत खुश रहते ना. और ऐसे ना हो कि ऐसे मतलब नहीं होता कि हम खुश रहे और दूसरे को ये अनुभूति ना हो. खुशी एक जैसे फूल जैसी खुशी है, या तो अगर अगरबत्ती होती है ना, इंसेंस, ऐसे खुशी है कि आप खुश हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे आपके साथ भी खुश होते जाते हैं. और जीवन का यही माप है. इन इंग्लिश वी से बैरोमीटर, हैप्पीनेस इज द बैरोमीटर ऑफ लाइफ. जीवन का यही माप है कि हम कहाँ तक कितने खुश है. क्योंकि जितने हम खुश होंगे ना, उतना हम कहेंगे हाँ हम सक्सेसफुल है, सफल है, विक्टोरियस है, विजयी है. और दिखाई देता है ना हमारी जो खुशी है, वो चेहरे पे जो खुशी है वो तो ऑटोमेटिकली दिखाई देती है. ऐसे कोई ना कहे कि नहीं नहीं मैं तो खुश हूं, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ हो. तो इसलिए खुशी हमारी वो बैरोमीटर हो जाती है. आप किसी को देखते हो वो खुश लगता है, खुश दिखता है और असल में दिखता है, तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, आप में शांति आ जाएंगी कि नहीं वो ठीक है. समझो आपका बेटा है, कहाँ बच्चे हैं, दूर रहते हैं, लेकिन फोन से बात करते हैं, खुश मतलब लगते हैं, खुशी खुशी से बात करते हैं, तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे ना कि नहीं सचमुच ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है. लेकिन जैसे ही कुछ दुख आता है ना, दुख का अंश आता है, तो हमको भी वो चिंता में लगा देता है. तो इसलिए खुशी हमेशा हमको, इसलिए हम क्यों कहते हैं खुराक है, क्योंकि खुशी है तो जिंदगी है, तो जीवन है. खुशी नहीं है तो जीवन ही नहीं है. ब्राह्मीन हम क्यों बने, ब्राह्मीन क्यों बने, खुश मिजाज जीवन जीने के लिए ना, निरंतर खुशी का अनुभव करने के लिए. और हम जब योग में भी बैठते हैं तो किस लिए, ताकि हमारी जो आंतरिक खुशी है वो इमर्ज करने के लिए. लेकिन इससे पहले मैं ये बात बताती हूँ कि जिस घड़ी, अच्छा मैं पूछती हूँ आपको, तो पहले माया आती है या पहले खुशी चली जाती है? आप चेक करो अपने को, पहले माया आती है, पहले कोई विकार आता है, या पहले खुशी चली जाती है इसलिए माया आती है? तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगी कि जैसे हमारी खुशी चली जाती है ना, इसलिए विकार आता है. इस पे थोड़ा आप मंथन करो, सोचो. जो भी बात हमारे जीवन में हो रही है ना, वो जिस घड़ी हमको हलचल में ले आएंगे ना, उस घड़ी हमारी खुशी चली जाती है और उसकी वजह से विकार आते हैं. मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने कहा आपने कुछ प्लानिंग की और फिर वो आपके प्लान अनुसार नहीं गई बात, तो पहले तो आप असंतुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। पहली बात यह होती है। फिर इसके बाद अहंकार आता है या क्रोध आता है या कुछ ना कुछ हम अपशब्द बोल देते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का भाव यह है कि जितना हो सके हम हमारी खुशी को बचा के रखें। हमारी खुशी हीरो से भी बहुत वैल्यूबल है। हमारी खुशी ये सब हीरे जवाहरों से भी बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि खुशी ऐसे ही नहीं आती है। खुशी भले नेचुरल है, आंतरिक है, ऑटोमेटिक है, लेकिन हर एक चाहता है कि हम खुश रहे। लेकिन कौन कौन निरंतर खुश रह सकता है? जो भाग्यवान है वो ही निरंतर खुश रह सकता है। और खुशी हीरे भी देने से नहीं मिलती है। जिस देश में मैं रहती हूँ वो सबसे अमीर देश माना जाता है, और इस देश में सबके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ, और पढ़ाई भी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बच्चों को भेजते हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेबर की कमी नहीं है, मकानों की कमी नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है। लेकिन जब आते हैं हमारे पास तो शिकायत की लिस्ट, दुख की लिस्ट। इसका मतलब हम क्या सीखते हैं कि भले ये सब कुछ होने के बाद भी, उसके बावजूद भी हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जब आते हैं तो यही हम पहली बात सिखाते हैं ना कि हम खुश रहे अंदर से। मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो अंदर की जो खुशी है वो इमर्ज करनी है। जब भी हम कहते हैं कि ये करने से मैं खुश हूं या इस कारण से मैं खुश हूं, इसकी वजह से मैं खुश हूं, तो ये गलत बात है। क्योंकि इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये अगर नहीं होता तो मैं खुश नहीं होती। तो ये तो एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड हो गए हम। अच्छा खाना खाया तो हम खुश है, सफर अच्छी गई तो हम खुश है, तबीयत ठीक है तो हम खुश है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस आई एम हैप्पी। ये गलत बात है। हैप्पीनेस के बाद बिकॉज नहीं आना चाहिए। हैप्पीनेस मतलब सुख के बाद क्योंकि, ये कारण, ये नहीं आना चाहिए। बस मैं खुश हूं, बस फुल स्टॉप। अंदर से वो खुशी उत्पन्न हुए। इसलिए कई बार ऐसे लगता है ना कि ये तो कोई बुद्धू जैसा है, ऐसे ही हंसता रहता है या खुश रहता है, कुछ वजह नहीं होती है लेकिन ऐसे ही। तो यही स्थिति होनी चाहिए क्योंकि यही निरंतर खुशी है। कुछ कारण आ जाता है तो ये लिमिटेड खुशी हो जाती है। यही प्रॉब्लम है। लिमिटेड खुशी में कुछ लिमिटेड कारण होगा, तो इसलिए इसके पीछे हमको नहीं भागना है। अच्छा, तो फिर हम आते हैं, जैसे मैंने कहा ना, दुनियावी लोग क्या करते हैं, पहले ये फॉर्मूला है। एक्चुअली फॉर्मूला ये है कि दुनियावी लोग क्या करते हैं, पहले कर्म करते हैं, दे डू, ये करते 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 फिर प्राप्ति होती है। तो अच्छी पढ़ाई पढ़ी, अच्छी स्कूलिंग हुई, अच्छे मार्क्स मिले तो अच्छी नौकरी मिलेंगी। अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी मिली तो फिर खुश होंगे, राइट? सो यू डू, यू गेट एंड यू बी। कर्म करो, प्राप्ति होती है, फिर खुश हो जाते हैं या खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ क्या है फॉर्मूला? यहाँ क्या सिखाते हैं बाबा? ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है, रिवर्स में है, कि पहले हम खुश रहे, पहले हम खुश रहे, पहले हम यही प्रैक्टिस करें जितना हो सके कि हमारी खुशी कोई हिसाब से छूटनी नहीं चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, या तो कोई छीन न लेवे, कोई या कोई कोई पर्सन या तो कोई सिचुएशन मेरी खुशी छीन ना लेवे, ये अटेंशन होना चाहिए। तो पहले हम खुश रहते हैं, पहले हम फुल रहते हैं, कंप्लीट रहते हैं, संपन्न हो जाते हैं इस खुशी में, फिर आप ही हमको जो चीज चाहिए वो आप ही आएंगी, जो प्राप्तियां जो बाबा कहते हैं या जो साधन हमको चाहिए सेवा के लिए वो सब आ जाएंगे। और फिर हम करते हैं, वी डू, यस, सो वी बी, वी गेट एंड देन वी डू। तो यही बिग डिफरेंस है हमारे में, ब्राह्मण परिवार में और लौकिक लोगों में, कि ये लोग हमेशा कुछ न कुछ, मतलब किसी न किसी बात के पीछे भागते रहते हैं। और हमको पता है कि बस हमको भागना नहीं, हमको बस यही ही बैठना है। तो दिस इज मेन पॉइंट। नाउ मेन पॉइंट ये है कि जैसे हम अपनी स्वमान की स्थिति में सेट हो जाते हैं ना, और बिल्कुल अभी ट्राई करते हैं, चलो बस अपने को आत्मा समझो, इस शरीर के जो भृकुटी के बीच में विराजमान हो जाओ, और बस ये समझो कि ये जो शरीर है वो मेरा तख्त है। और स्वमान का मतलब क्या है? स्वमान का मतलब ये है कि पहले मैं अपने को मान दू, स्वमान। लेकिन मान किस चीज को दी जाती है? जब कुछ अच्छाई है, जब कुछ गुण है, जब कुछ विशेषताएं हैं, तो इसलिए हमको अपनी विशेषता देखनी होंगी या खोजनी होंगी। यही काम हम करते हैं मेडिटेशन में। जो हमारी विशेषताएं होती है ना, वो मेडिटेशन में बैठ के बाबा के साथ योग लगा के हम अपनी जो विशेषताएं है वो मजबूत करते हैं। बार बार हम अपने को याद दिलाते हैं। इंग्लिश में भी हम कहते हैं ना, एफर्मेशंस, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं फराग दिल हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान ने क्या नहीं दिया है हमको, सब कुछ दिया है। तो ये अबंडेंस कॉन्शियसनेस, भरपूर कॉन्शियसनेस चाहिए हमको। यूनिवर्स भी कहता है, हाँ, यूनिवर्स भी कहता है इसको दो क्योंकि उसको वैल्यू है हर चीज की। तो इसलिए ये जो आत्मा जो संपन्न है ना, भरपूर है ना, इसके पास सब कुछ आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि उसको वैल्यू है, हर चीज की वैल्यू है, हर चीज की ग्रेटिट्यूड है, धन्य धन्य है वो आत्मा। जो नाराज है, जो दुखी है, वो तो हमेशा देखेंगे ना कि उसका ग्लास आधा खाली है, लेकिन जो संपन्न आत्मा है, पवित्र भरपूर आत्मा है, वो तो हमेशा कहेंगे, अरे मेरा ग्लास तो फुल है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो उसकी भाषा, उसकी सोच, उसके उसका व्यवहार, सब कुछ ऐसा ही होगा कि नहीं, बाबा ने हमको सब कुछ दिया है, दिल भरा हुआ है। तो ऐसे सोच करने से हमारा स्वमान बढ़ता है। इसलिए मैंने पहले आपको पूछा, जिस घड़ी हम वो स्वमान की सीट से उतर जाते हैं ना, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है और फिर माया को हम चांस देते हैं आने का। तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम माया को चांस न देवे, क्योंकि जैसे माया आती है ना, तो हम और ही कमजोर होते जाते हैं और फिर ऊपर चढ़ना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी आते हैं देवता ना, देवी देवता, लक्ष्मी नारायण की बात जब हम करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की खुशी कहाँ से आई? अभी के जो कर्म किए यहां से आई ने खुशी, यहां इतने अच्छे कर्म किए मम्मा बाबा ने कि फिर जाके वो लक्ष्मी नारायण बने। इसलिए दादी जानकी भी हमेशा कहती थी कि लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण के धन से नहीं जी रही है, लक्ष्मी ने अपना धन कमाया है अपने आप। संगम युग पे लक्ष्मी ने अपने आप अपना धन कमाया है, उस वजह से वो लक्ष्मी बनी, न कि नारायण की वजह से वो लक्ष्मी बनी। तो हमको भी हमारा अधिकार अभी से हमको लेना है, हमारा अधिकार अभी पक्का करना है वो। और वैसे भी हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि देयर इज हैप्पीनेस इन गिविंग। हम क्यों कहते हैं देवता, क्योंकि देवता ने दिया, और क्या दिया, खुशी दी। हम जब सेवा की बात करते हैं तो सेवा का मतलब क्या है, सेवा का मतलब है खुशी देना, दूसरे को खुश करना। तो जैसे हम देते जाते हैं ना, देते जाते हैं ना, देते जाते तभी हम देवता बन जाते हैं। इट्स ऑटोमेटिक। हमको ये नहीं सोचना है कि हमको वो देवता बनना है, वो देवता बनना है, या तो ऐसे, नो। फर्स्ट वी हैव टू जस्ट गिव। पहले जो भी, ये भी मैंने देखा, दादी के आगे जो भी आता था, बाबा के आगे जो भी आता था, जो गार्डनर आता था, प्लम्बर आता था, लेबर आता था, कोई माँ आती थी, या तो कोई बच्चा मतलब स्टूडेंट आता था, सभी को बाबा ने कुछ न कुछ दिया। स्थूल में भले न दिया हो, लेकिन कुछ अच्छे वचन, दुआ, कुछ आगे बढ़ाने की कुछ प्रेरणा। तो हम तो भी वो कर सकते हैं ना, वो मतलब इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। तो हम भी दूसरे की विशेषता को देखें और उन्हों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे ही हम धीरे 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 हम इतना हमारी आत्मा में हम जमा करें, इकट्ठा करें कि आधा कल्प के लिए हमको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। जब रॉयल्टी होती है तो रॉयल्टी को काम नहीं करना पड़ता है, रॉयल्टी इज सर्व्ड। दूसरे आके रॉयल्टी की सेवा करते हैं, लेकिन अभी अभी हमको वो रॉयल्टी नहीं चाहिए, वो ऊपर ऊपर की रॉयल्टी नहीं चाहिए। यस, आत्मा की रॉयल्टी चाहिए, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, सब कुछ अपने आप करो, दूसरे से सेवा नहीं लो, और फिर अच्छे कर्म करते जाए, और फिर वो ही आगे हम जाके फिर लक्ष्मी नारायण जैसे, या तो देवी देवता जैसे पद पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूं, हमारी खुशी जो जमा हो रही है वो अभी सेवा करने से हो रही है ना। हम दूसरे को जब उठाते हैं, दूसरे को अपनी दुविधाओं से निकालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमको खुशी मिलती है ना। बाबा भी कहते हैं कि सेवा का फल क्या है, खुशी है। तो इसलिए हर एक, मैं समझती हूँ, कुछ ना कुछ तो सेवा कर सकते हैं। ऐसे नहीं सोच सकते कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या तो बड़ी बड़ी सेवा नहीं होगी। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ सेवा तो कर ही सकता है। तो हमको भी सोचना है कि मेरे पास इतना सारा कुछ है कि हम 8 बिलियन सोल्स को हम दे सके। 8 बिलियन, 8 बिलियन सोल्स को हमको कुछ ना कुछ देना है। तो हमारे पास है क्या इतना जमा? दादी हमेशा हंसती थी और कहती थी, कौन अकाउंटेंट है जो मेरा अकाउंट्स देख सकता है कि मैंने कितना जमा किया है? पैसे की बात नहीं कर रही थी दादी, दादी अपने कर्मों की बात कर रही थी। तो हमने भी, हमको पता है हमने कितने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे कितने किए हैं, वो भी हमको बैठ के जांच करनी है। ऐसे ना हो कि फिर लास्ट में हमको धोखा मिले कि हम तो ये भ्रम में थे कि अरे मैंने तो बहुत कुछ किया था, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, उसका वो बीज क्या था, उसका बीज सही नहीं था तो फल भी ऐसा ही निकलेगा। तो इसलिए हमको वही चेक करना है कि हमने जो दिया है वो सच्चे दिल से दिया है, हमने जो कर्म किए हैं वो सच्चे दिल से किए हैं। सच्चे दिल से नहीं किए हैं तो वो जमा के खाते में नहीं जाएगा। तो अभी भी टाइम है, बाबा कहते हैं ना अभी भी टाइम है कि अभी भी चेक करो और अपने को चेंज करो, नहीं तो क्या है कि बाद में हमको बहुत पछताना पड़ेगा और फिर लास्ट में फिर टाइम नहीं होगा वो चेंज करने का। तो इसलिए हम अपने को इतना भाग्यवान समझे और हमारी जो अंदर की हर एक जो विशेषता है वो इमर्ज करे, क्योंकि जैसे हम इमर्ज करेंगे ना तो बाबा को भी हम चांस देंगे यूज करने का। हम खुद को पता नहीं है मेरी विशेषता क्या है तो बाबा भी कैसे यूज करेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। तो इसलिए हम बाबा के साथ बैठ के और जो हूं जैसा हूं अपने को कहो, बस मैं जो हूं जैसी हूं बाबा आपकी हूं और आपको मेरे को यूज करना है, मैं तैयार हूं, मैं हाजिर हूं। और आप देखो फिर बाबा कैसे आपको यूज करते हैं। तो हमारा एम क्या है, एम है कि हम खुश रहे और शांति में रहे और ये खुशी और शांति हम बांटते जाए। तो खुशी कैसे बांटी जाती है, कहते हैं ना कंटेजियस, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। आप ही विचार करो, आप एक घंटा या पांच मिनट या दस मिनट कोई नाराज व्यक्ति के साथ या तो कोई दुखी व्यक्ति के साथ टाइम बिताओ, आप सोचेंगे ये कब खत्म होगा। लेकिन एक दिन आप कोई अच्छे खुश मिजाज व्यक्ति के साथ टाइम बिताओ तो आपको लगेगा नहीं और चाहिए टाइम इस व्यक्ति के साथ। तो इसलिए जब भी हम दुखी होते हैं तो कोई हमारा फ्रेंड्स नहीं होता है, कोई नजदीक भी नहीं आने चाहते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे कुछ कहावत है कि Nobody is your friend in sorrow, everybody is your friend in happiness. तो फिर आते हैं बाबा मम्मा पे। तो बाबा और मम्मा ने हमेशा अपनी स्थिति को संभाले। स्थिति को संभालना माना वही कि अपनी खुशी मतलब जमा के रखी, मजबूत रखी। कुछ भी स्थिति आती है और खुशी चली जाती है इसका मतलब कि मैं कमजोर हूं। वैसे भी हम कहते हैं ना सेल्फ कंट्रोल इज द ग्रेटेस्ट कंट्रोल। जब हम अपने को, अपने संकल्पों को, विचारों को, अपनी भावनाओं को हम अपने काबू में रखते हैं तो दिस इज द ग्रेटेस्ट कंट्रोल। तो ग्रेटेस्ट कंट्रोल माना कि ये सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रोल है। दूसरे को तो शायद हम कंट्रोल कर सके लेकिन अपने को, आजकल जो विशेषता लीडरशिप्स मतलब लीडर्स में देखने चाहते हैं वो यही है कि ये व्यक्ति जो कहता है वो कर सकता है, वो व्यक्ति नहीं कर सकता है इसका मतलब He is not a leader. तो लोग क्या देखना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं या नहीं, और जब हम करेंगे तभी we become respect worthy, मान लायक बनते हैं हम। लेकिन इसके लिए हमको पहले अपने को ये मान देना होगा, पहले अपने को समझाना होगा, अपने से बातें करनी होंगी कि ये ठीक नहीं है या ये ठीक है। दूसरे आके कहे वो तो ठीक नहीं है ना, वो ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए हम अपने को ही चेक करें और अपने को ही चेंज करें और अपने से ही बातें करें। बाबा तो जानते ही है कि ये बच्चा ऐसा है या ये बच्चा ऐसा है, लेकिन हमको अपने से, वी हैव टू सेल्फ रियलाइज। तो जब हम अपने को जान लेवे, जब हम अपने को पहचान लेवे कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेसेस है, तो फिर हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम ही अपने को अहंकार की वजह से या कुछ अभिमान की वजह से अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए बाबा सिखाते हैं कि बच्चे नम्र बनो, ड्रामा हमारा टीचर है, बाबा हमारा टीचर है, फिर हमारे हिसाब किताब हमारे टीचर है। तो कितने टीचर्स हैं, हम इतनी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं कि ये सब टीचर्स है हमारी, सब सिखाने चाहते हैं हमको, हम तैयार हैं सीखने के लिए। बाबा रेडी है, ड्रामा इज रेडी, कर्म इज रेडी, हमारा भाग्य तैयार है, वेटिंग। बट आर वी रेडी, हम तैयार है क्या सीखने के लिए? तो जैसे स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो टीचर आप ही सामने आ जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने को बचा के रखो। और मैं तो समझती हूँ दुनिया में ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ऐसे तुरंत हमको हिला सकती है, छोटी छोटी बातें, मौसम या कुछ भी, जैसे कोविड आया, कुछ भी। लेकिन जो पास हुए सो पास हुए, और जो पास नहीं हुए वो फिर वो संस्कार न बन जाए। तो ये ध्यान रखना है हमको कि वो संस्कार न बन जाए। अच्छा, तो हम अभी समाप्त करते हैं बाबा की याद में। और आप कोशिश करो कि जितना आपकी जो खुशी की जो शक्ति है वो बढ़ती जाए। आप ड्रामा को अप्रिशिएट करो, अपने भाग्य को अप्रिशिएट करो, अपने स्वमान में रहो। ओम शांति। थैंक यू।